प्रिय छात्रों, आज के हमारे पाठ का विषय है संख्यावाची शब्दाः, अर्थात संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द किन्हें कहते हैं? जो शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश। संस्कृत भाषा में संख्याओं के रूप लिंगों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में भिन्न भिन्न प्रकार से। उसके विषय में हम उदाहरणों के बाद चर्चा करेंगे। अभी उदाहरण मात्र नपुंसक लिंग के लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उनको भी देखेंगे। सबसे पहले एकम पुस्तकम, द्वे नेत्रे, त्रीणि गृहाणि। एकम पुस्तकम का अर्थ हो गया एक पुस्तक, द्वे नेत्रे अर्थात दो नेत्र, त्रीणि गृहाणि तीन घर, चत्वारि यानानि अर्थात चार यान, पंच फलानि पांच फल, षट मित्राणि छह मित्र, सप्त व्यजनानि सात पंखे, अष्ट कंदुकानि आठ गेंदे, नव पत्राणि नौ पत्ते, एवं अंतिम दश पुष्पाणि दस फूल। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि यहाँ जितने भी शब्द आए हैं वे सभी नपुंसक लिंग थे, इसलिए संख्या भी नपुंसक लिंग के रूप में ही उपस्थित हुई। जैसे पुस्तकम नपुंसक लिंग शब्द है, नेत्रम नपुंसक लिंग शब्द है, गृहम नपुंसक लिंग शब्द है, यानम नपुंसक लिंग शब्द है, फलम नपुंसक लिंग शब्द है इत्यादि। अब बात करते हैं संख्याओं में लिंग के अनुसार परिवर्तन कैसे होता है। जैसे बालक शब्द है, बालक शब्द पुल्लिंग है, उसके रूप बनते हैं बालक बालकौ बालकः। तो बालक जब एक रहेगा तो एक बालक ऐसा संख्या रूप बनेगा, एक, यानी कि पुल्लिंग में एक आएगा। अगर वही शब्द बालिका के लिए प्रयोग हो, एक बालिका है, तो वहां रूप परिवर्तित होकर एक से एका, एका बालिका ऐसा हो जाएगा। वही जो नपुंसक लिंग में हम अभी अभी पढ़कर आए, अगर कोई एक पुस्तक है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, एकम पुस्तकम। इसी प्रकार प्रत्येक लिंग के लिए हर संख्या का अलग अलग रूप रहेगा। जैसे पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक से लेकर चार तक की संख्याओं में लिंग के अनुसार परिवर्तन होता है, परंतु पांच व पांच के बाद सभी संख्यावाची शब्द समान रहते हैं। कैसे, उसको आगे जानेंगे। पहले पुल्लिंग को देख लेते हैं। जैसे अगर कोई एक बालक है, उसको हमें संस्कृत में कहना है तो एक बालक। दो ग्लास हैं तो चषक, चषक शब्द पुल्लिंग होता है, तो द्वौ चषकौ। तीन वृक्ष हैं तो त्रयः वृक्षाः। चार अध्यापक हैं तो चत्वारः अध्यापकाः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में एक बालिका है, कोई एक लड़की है, तो उसके लिए कहा जाएगा एका बालिका। दो साइकिल्स हैं, साइकिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्विचक्रिका। तो दो साइकिल्स को क्या कहेंगे, द्वे द्विचक्रिके। माला, माला तीन है तो उनको कहेंगे तिस्रह मालाह, चार महिलाएं हैं तो उन्हें कहा जाएगा चतस्रह महिलाह। ऐसे ही जैसे हमने अभी नपुंसक लिंग में पढ़ा, एक पुस्तक के लिए एकम पुस्तकम, दो पुस्तकों के लिए द्वे पुस्तके, तीन पुस्तकों के लिए त्रीणि पुस्तकानि, चार पुस्तकों के लिए चत्वारि पुस्तकानि। यहीं अगर हम कहें कि तीन पत्तों के लिए, पत्तों के संस्कृत होती है पर्णम, यानी कि वो नपुंसक लिंग शब्द है, तो नपुंसक लिंग ही संख्यावाची शब्द वहां आएगा। जैसे पर्णम पर्णे पर्णानि, तीन पर्ण हैं तो वो बहुवचन में हो गए, अर्थात तीन शब्द जो होगा उसकी जब हम संस्कृत बनाएंगे तो वह भी बहुवचन और नपुंसक लिंग में ही आएगा। तीन पत्तों के लिए त्रीणि पर्णानि, क्योंकि पत्र की संस्कृत होती है पर्णम, पत्ते की संस्कृत पर्णम, पर्णम पर्णे पर्णानि, उसी प्रकार से तीन के लिए त्रीणि, क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द है पर्णम, इसलिए त्रीणि पर्णानि। चार फल तो चत्वारि फलानि। अब इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक से लेकर चार तक की संख्याओं में सभी अलग अलग रहते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी के रूप अलग अलग होते हैं, परंतु चार के बाद यानी पांच और पांच से आगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों की संख्याएं समान रहती हैं, कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं होता। जैसे पुल्लिंग में पंच षट सप्त अष्ट नव दश, स्त्रीलिंग में भी पंच षट सप्त अष्ट नव दश, और नपुंसक लिंग में भी समान रहेगा पंच षट सप्त अष्ट नव और दश। इस प्रकार से यहाँ पांच और पांच से आगे के सभी संख्याएं वाची शब्द एक समान रहते हैं। इस प्रकार संख्यावाची शब्दों में एक से दस तक संस्कृत में उच्चारण कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।